नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अहमदाबाद में कांग्रेस के दफ्तर पर हमला करने के कुछ ही दिनों बाद राहुल गांधी का वहां जाना और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना बता रहा है कि वे गुजरात में इस बार बड़ी राजनीतिक लड़ाई की तैयारी में लगते हैं। एक हफ्ते के भीतर राहुल गांधी ने दूसरी बार गुजरात में बीजेपी को हराने का चैलेंज दिया है। यह उनका अति आत्मविश्वास बोल रहा है या वाकई में वे गुजरात में कांग्रेस को लेकर कुछ नया करने की सोच रहे हैं? यह उस हमले का वीडियो है जब बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर पर हमला करने गए थे। 1 जुलाई को लोकसभा में राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आस्था को ठेस पहुंचे, लेकिन बीजेपी कहती रही कि हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। 2 जुलाई को अहमदाबाद में कांग्रेस के दफ्तर पर बाहर से पत्थरबाजी भी शुरू हुई और भीतर जाकर दीवारों को भद्दा किया गया। पुलिस कितनी मजबूती से पत्थर चलाने वालों को इस वीडियो में रोक रही है आप भी देख सकते हैं। इतनी नजाकत से रोकने के बाद भी पत्थर चलाने वाले काबू में नहीं आए, मगर अहमदाबाद पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुजरात में चुनाव 2027 में होंगे। राहुल गांधी 3 साल पहले से कहने लगे हैं बीजेपी को यहां हरा देंगे।
मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है, अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे।
गुजरात में कांग्रेस काफी कमजोर हो चुकी है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान डालने के लिए चुनौती दे रहे हैं तो बात समझ में आती है कि उनकी यह रणनीति हो सकती है। लेकिन जिस राज्य में बीजेपी लगातार 7 बार से चुनाव जीत रही हो, वहां उसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। दिल्ली में भले ही नरेंद्र मोदी तीसरे प्रयास में 400 सीटें लाकर राजीव गांधी का रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 182 में से 156 सीटें लाकर गुजरात में एक रिकॉर्ड बना दिया। 7वीं बार के चुनाव में उसकी सीटों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और 1985 में कांग्रेस का 149 सीटें लाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। माधव सिंह सोलंकी के समय कांग्रेस को यह कामयाबी मिली थी। शायद यही वजह रही होगी कि जब राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि इस बार गुजरात में बीजेपी को हरा कर दिखाएंगे, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया।
गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, GST क्यों हुई, साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए GST और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है।
गुजरात में विधानसभा का चुनाव अभी बहुत दूर है। 2027 में जब गुजरात विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा तब तक बीजेपी के सत्ता में 32 साल हो जाएंगे। 2022 में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब था, 182 विधानसभाओं में उसे 17 सीटें ही मिली, इनमें से भी कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी में चले गए। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ गुजरात में 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, इनमें से 4 कांग्रेस से विधायकी का इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। इन्हीं में से एक थे अर्जुन मोडवाडिया, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष भी। एक तरह से बीजेपी भी दूसरे दल के भगोड़ों को विधायक बनाने की फैक्ट्री हो गई है। ऐसे में केवल यह कह देना कि गुजरात में कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती है, कभी राहुल गांधी सफल नहीं हो सकते, ऐसा किसी राजनीतिक दल के बारे में नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी को यह बात तो समझ में आ गई होगी कि 2024 की कामयाबी को अगर अगले चुनावों में बड़ा करना है तो राज्यों में कांग्रेस को ठीक करना होगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल कांग्रेस को जनता के बीच ले गए, तो अब राहुल गांधी को जनता के बीच बने रहने के लिए कांग्रेस के भीतर काम करना होगा और उसे बीजेपी में नेता भेजने की नर्सरी बचाने से रोकना होगा।
एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है।
अपनी कमजोरी को पहचानना और उस पर सबके बीच हंसना नई शुरुआत का पहला कदम हो सकता है। दलों का इतिहास ही ऐसा रहा है, हारते हारते फिर से उभर आने का और जीतते जीतते गायब हो जाने का। इसलिए अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस का बब्बर शेर कार्यकर्ता बीजेपी को हराएगा, तो उन्हें इस पर काम करना होगा कि बब्बर शेर बकरी की तरह बीजेपी में ना चला जाए। राहुल को देखना होगा कि कार्यकर्ता भले बब्बर शेर हैं, उनके विधायक बब्बर शेर क्यों नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फरवरी में कहा था कि विपक्ष के 411 विधायकों को बीजेपी तोड़ ले गई। जाहिर है इनमें कांग्रेस के ही ज्यादा होंगे। लोकसभा चुनावों के दौरान मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि इस बार बीजेपी के टिकट पर 100 ऐसे उम्मीदवार थे जो दूसरे दलों से आए, इनमें से 37 कांग्रेस से थे। ये भी कमाल है, राजनीति करो कांग्रेस में, सांसद बनो बीजेपी से, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता क्या करेगा? क्या उसका काम कांग्रेस से लाए गए विधायकों और सांसदों को जिताना रह गया है? अलग अलग जगह रिपोर्ट हुआ है कि भाजपा का हर चौथा उम्मीदवार पिछले 10 साल में भाजपा में किसी और दल से आकर शामिल हुआ, यानी भाजपा के एक चौथाई उम्मीदवार दल बदलू थे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी वाले भी दल बदल करने लग जाएं।
जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं।
2014 से पार्टी तोड़ने और सरकार तोड़ने में बीजेपी का ही रिकॉर्ड है। कांग्रेस को फिलहाल अपनी पार्टी और अपनी सरकार बचाने पर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान की तरह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बचाई है। उसके विधायकों के बीजेपी में जाने के बाद जब वहां उपचुनाव हुए तो कांग्रेस के बागी हार गए। लोकसभा चुनाव के साथ ही हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इन 6 सीटों पर बीजेपी ने उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, मगर बाद में इस्तीफा देकर बीजेपी में आ गए। इनमें से 4 इन उपचुनावों में हार गए। इन नतीजों से लगता है कि जनता भी अब अपने विधायकों का ऐसे झटपट पार्टी बदलना आसानी से स्वीकार नहीं कर रही है और कांग्रेस को भी सरकार बचाना आ गया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सरकार नहीं गिरी। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को पता नहीं कि बीजेपी को बिना मीडिया और पैसे के और बिना ईडी के कैसे मात देनी है, या राहुल ने बीजेपी का मुकाबला नहीं किया, लेकिन फिर भी कहना कि गुजरात में बीजेपी को हरा देंगे, देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी गुजरात के लिए क्या राजनीतिक कार्यक्रम लॉन्च करते हैं। लग सकता है कि राहुल गांधी पर 99 सीटों की सफलता हावी हो रही है, लेकिन इसके बीच वे राजनीति में इंटर्न की तरह आम लोगों के बीच जाकर अब भी उनका काम समझ रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर उन्होंने देखा कि रेलगाड़ी चलाने वाले चालकों की क्या हालत है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने सुरक्षा मुद्दों को लेकर राहुल गांधी को अपना ज्ञापन भी सौंपा। राहुल गांधी ने उनसे जाना कि लोको पायलट किन हालात में रेलगाड़ी चलाते हैं। मालगाड़ी चलाने वाले लोको पायलट की 14 से 16 घंटे की ड्यूटी होती है और 3 से 4 दिनों के बाद वे घर लौटते हैं। जून महीने में जब जलपाईगुड़ी के पास रेल दुर्घटना हुई, तब लोको पायलट को लेकर काफी चर्चा हुई। टेलीग्राफ में स्नेहा मोई चक्रवर्ती की रिपोर्ट है कि लोको पायलट की 18,000 से ज्यादा वैकेंसियां खाली हैं। उन्हें देर तक काम करना पड़ रहा है। केवल 14 से 16 घंटे काम ही नहीं बल्कि गर्मी के दिनों में इंजन के भीतर का तापमान 56 से 57 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ऐसी स्थिति में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं। कैबिन की हालत भी खराब होती है, शौचालय जाने की व्यवस्था नहीं होती। चुनाव से बहुत पहले राहुल गांधी अलग अलग पेशे से जुड़े लोगों के बीच जाकर मिलते रहे और उनकी बात समझते रहे। ऐसे कई वीडियो राहुल गांधी के YouTube चैनल पर हैं। चुनाव समाप्त होने और लोकसभा सत्र के तुरंत बाद राहुल गांधी हाथ से काम करने वाले मजदूरों के बीच पहुंच गए। इसका मतलब है कि उनके बीच कुछ स्थायी रूप से बदला है। अच्छा है कि नेता जनता के बीच ही रहे और उनकी स्थिति को देखता रहे, समझता रहे, समझे कि जब उन्हें सत्ता मिलती है तो आसपास के लोगों को, उद्योगपतियों को ज्यादा लाभ मिलता है या आम नागरिकों को। 6 जुलाई को राहुल गांधी ने एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है जिसमें वे इमारती निर्माण से जुड़े मजदूरों से मिल रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। इस वीडियो का कुछ हिस्सा आप देखिए, हमने इसमें थोड़ा संपादन किया है और इस वीडियो में इस्तेमाल म्यूजिक हटा दी है।
गोपालपुर सबसे मुश्किल काम है, सबसे कम पैसा मिलता है।
हाँ, ये सपनों में भी नहीं सोचे।
और सबसे मुश्किल काम आप करते हैं, कोई सोचता भी नहीं,
हाथ भी कट जाता है इससे।
जब इस पे कोई चलता है वो ये भी नहीं सोचता कि ये किसी मजदूर ने बनाया।
गौतम बुद्ध नगर के दिहाड़ी मजदूरों से राहुल गांधी का मिलना भी एक संयोग है। इसी गौतम बुद्ध नगर में राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने धक्का दिया था। आजकल राहुल गांधी के YouTube चैनल की खूब चर्चा होती है, इसकी भी कि उनके वीडियो को कितने व्यूज मिलते हैं। लेकिन 3 साल पहले राहुल गांधी के YouTube चैनल पर हाथरस बलात्कार कांड के वक्त का भी एक वीडियो है। उसे 3 साल में अभी तक 39,000 व्यूज मिले हैं। 2020 का यह साल था और यही हाथरस था जब एक दलित लड़की के साथ हुए बलात्कार और पुलिस द्वारा उसका जबरन अंतिम संस्कार कर देने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उसके परिवार से मिलने जा रहे थे। दोनों को हाथरस जाने से रोकने के लिए दिल्ली यूपी की सीमा पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दोनों को कुछ देर के लिए गिरफ्तार भी किया गया और इसी आपाधापी में राहुल गांधी गिरते गिरते बचे थे। विपक्ष के एक सांसद के साथ पुलिस ने ऐसा बर्ताव किया। यही नहीं, जब तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद हाथरस की बलात्कार पीड़िता के घर जाने का प्रयास कर रही थी तब उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई थी। क्या राहुल गांधी का उसी हाथरस में लौटना राजनीति के प्रति उनकी निरंतरता नहीं है? एक राय होगी कि राहुल अब जाकर बदले हैं, लेकिन राहुल गांधी तो तब से जनता के बीच जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जब किसानों पर गोलियां चली थी वे बाइक से उनके बीच पहुंच गए थे। यह भी हाथरस का वीडियो है, लेकिन 2024 में जब राहुल गांधी हाथरस जाते हैं तो पुलिस रास्ता रोकने नहीं आई बल्कि सुरक्षा में लगी रही। 4 साल के बीच राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनकर इस हाथरस में लौटना काफी कुछ कह रहा है। यहां एक बाबा के कार्यक्रम के बाद मची भगदड़ में 120 से अधिक लोगों की मौत हो गई, बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। राहुल गांधी इन्हीं परिवारों के बीच पहुंचे और उन्होंने सांत्वना दी। इस बार राहुल गांधी के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, उन्हें घायलों से मिलने दिया गया और जिन परिवारों ने अपनों को खोया है वहां पहुंचकर राहुल गांधी उन्हें ढाढ़स बंधाते रहे। राहुल का यह बयान संयम भरा था।
दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूं, मगर प्रशासन की कमी तो है
जी
और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए
जी,
क्योंकि ये गरीब परिवार है
जी,
और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पेंसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पेंसेशन करें।
राहुल जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पर ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं।
मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं।
सवाल ये था कि मुआवजे की रकम
जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई
जी,
उनके परिवार के बारे में
जी,
उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करती
हूं। बार बार राहुल गांधी का ऐसा करना यह भी बता रहा है कि वह हार की निराशा और जीत के उत्साह से खुद को दूर रखने का प्रयास भी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी की जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद राजनीति में उनकी सक्रियता उनके बदलने की भी कहानी कहती तो है ही। दिहाड़ी मजदूरों और लोको पायलट के बीच कौन जाता है उनका हाल लेने, उनके जीवन में झांकने? नेता जब तक जनता के बीच नहीं जाएगा, सदन में किसकी आवाज उठाएगा? नेता प्रतिपक्ष केवल संसद में नहीं होते, वो पद से नहीं बनते हैं, वो बनते हैं जनता के बीच रहकर, आम लोगों की जिंदगी में शामिल होकर उनके साथ काम करने का अनुभव कभी बेकार नहीं जाता है। इन सब से भले सत्ता ना मिले, लेकिन राजनीति में होने की समझ मिलती है, मकसद मिलता है। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें नॉन सीरियस बताने के पीछे बहुत मेहनत की गई है।
मीडिया में मेरे बारे में कहते थे कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन सीरियस है। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस। मनरेगा नॉन सीरियस, जमीन अधिकरण बिल नॉन सीरियस, न्यामगिरी नॉन सीरियस, भट्टा परसोल नॉन सीरियस, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली सीरियस। मतलब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मान लीजिए ये कमरा है, इसमें 1000 लोग बैठे हैं, 1000 लोग में से आप यहां पे 20 लोगों को हेडफोन दे दीजिए और माइक्रोफोन दे दीजिए और वो 20 लोग 24 घंटा चर्चा कर रहे हैं और 990 लोग यहां बैठे हुए हैं, उनकी ना कोई बात सुनता है, ना उनके पास लाउडस्पीकर, ना उनके पास माइक्रोफोन हेडफोन, वो देखते रह जाते हैं और जब भी कोई 90% की बात करता है तो वो नॉन सीरियस हो जाता है।
राहुल गांधी ने अपनी तरफ से एक ईमेल जारी किया है ताकि लोग उन तक अपनी बात पहुंचा सकें और उनसे ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग के लिए समय मांग सकें। communications@rahulgandhi.in पर उन्हें ईमेल भेजा जा सकता है। इसी तरह का संवाद उन्होंने चुनाव के दौरान किया, जब हजारों लोगों ने उन्हें ईमेल भेजे और राहुल ने उनके नंबर पर सभी के नहीं कॉल करने का वीडियो भी जारी किया। सवाल है कि कांग्रेस में क्या केवल राहुल गांधी ही बदल रहे हैं या कांग्रेस भी बदल रही है? कांग्रेस के बाकी नेता भी क्या आम लोगों के बीच जाने लगे हैं? नमस्कार, मैं रविश कुमार।